रात्रि क्लास चल रहा था 18/1/1966 और रिवाइज हुआ इसी तारीख को 1967 में। बात चल रही थी कि रास्ता तो यही बताया है, खाली लफ्ज नहीं बताते हैं बच्चों को कि ये रूहानी अर्थ रूहानी यात्रा है मनमना भव की। यात्रा में कहाँ पहुँचना है, भक्ति मार्ग में भी यात्रा करते हैं तो कहीं पहुँचा जाता है ना। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर माने किनारा, माने स्थान, अर्थात एक ठिकाने पहुंचाने वाले स्थान पर। तो किस स्थान पर पहुंचना है? रूहों को पहुंचना है रूहानीगर, और जो रूहें हैं आत्माएं सब आत्माएं परमपिता के बच्चे हैं। आत्माओं के बाप का घर है रूहानी धाम। यहाँ की हमारी रूहानी यात्रा है। जिसके लिए कहते हैं मनमना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है मेरे मन में समा जा? ये कौन सी आत्मा कहती है? है आत्माओं का बाप कहते हैं या मनुष्य आत्माओं का बाप कहते हैं? है क्यों मनुष्य आत्माओं का बाप जो मननाथ मनुष्य कहे जाते हैं, मनन चिंतन संकल्प विकल्प करने वालों का बाप है। वो ही मनुष्यों का बाप है जिसको मन है। आत्माओं के बाप को तो मन है ही नहीं। तो मनुष्यों का बाप कहते हैं मन मना भव। फिर आता है मध्यादि भव। याजी माने यज्ञ करने वाला, यजन करने वाला, स्वाहा करने वाला, अर्थात इस संसार में आत्मा आती है तो सारा जीवन यजन कार्य में जाना चाहिए। यजन अर्थात सेवा कार्य। तो मत याजी भव, मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, मेरे अर्थ यजन करने वाला भव। इसको कहेंगे रूहानी वर्षा। मेरे अर्थ सेवा अर्थात मेरे अर्थ यज्ञ कार्य, यज्ञ सेवा, जो इस यज्ञ का नाम है अविनाशी रुद्रज्ञान यज्ञ। अविनाशी का मतलब भी है जिस यज्ञ का विनाश कभी नहीं होता। तो जो यजन करता है उसका विनाश होगा? जो सेवादारी है आत्मा की सर्वशक्तियों को ईश्वरीय सेवा में यजन करने वाला है, स्वाहा करने वाला है, वो भी विनाशी होना चाहिए या अविनाशी है? रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का यज्ञ पिता कौन है? रुद्र है। और रुद्र नाम रौद्र रूप धारण करने वाले का है। शास्त्र में सभी नाम जैसा नाम वैसा काम। तो ये रौद्र रूप धारण करना कब की बात है? मां मृत्यु के समय की बात है। साधारण मृत्यु तो होती आई, जन्म जन्मांतर होती आई, परंतु ये महामृत्यु तब होती है जब मनुष्य आत्माएं अपने यजन कार्य को भूल जाती हैं, सेवा कार्य को भूल जाती हैं। जो बाप का भी अभीष्ट कार्य है, आत्माओं के बाप का अभीष्ट कार्य क्या है? इसलिए इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर आता है, है? सेवा करने के लिए आता है। क्या बोलता है? आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा होना चाहिए। फिर गड़बड़ी क्या हो जाती है? महामृत्यु के समय तक जन्म मरण के चक्र में आते आते देह और देह की इंद्रियों का सुख भोगते भोगते क्या गड़बड़ हो जाती है? जो महामृत्यु का सामना करना पड़ता है जब मृत्यु पर ही कभी विजय नहीं पाई तो महामृत्यु पर कैसे विजय पावेंगे? बाप की याद से महामृत्यु पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप त्रिकालदर्शी है। तीनों काल के आद्यंत को जानने वाला है। सदा शिव कहा जाता है। शिव माना ही कल्याणकारी। कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो बाप बच्चों से भी ये आशा करता है कि बच्चे भी सदा कल्याणकारी हो कर रहे हैं, परंतु मनुष्य आत्माएं जिन्हें पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देव कहा जाता है, देवता अर्थात देने वाले, लेने की इच्छा नहीं करने वाले, वो ही देवात्माएं कौन से खंड में गाए हुए हैं? विदेशी धर्म खंडों में गाए हुए हैं या एकमात्र स्वदेशी धर्म खंड है भारत, जहाँ के वासी गाए हुए हैं देव? वो देवात्माएं दाता के बच्चे हैं, वो देवभूमि भी दाता ने रची है। वो दाता क्या देता है? खुद मुक्ति जीवन मुक्ति भोगता है, वो खुद ही मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं भोगता तो दूसरों को कैसे देगा? हाँ, वो ज्ञान धन का दाता है और अखूट ज्ञान धन देता है। जो देता है उसको लेने वाले लेते भी हैं अकूट ज्ञान का भंडार के अलबेले हो जाते हैं।
अंदर
अंदर अलबेले नहीं हो जाते, अरे तो अभी स्पीड को पकड़ नहीं सकते, अभी तो स्पीड को मुरली का स्पीड को पकड़ नहीं सकते, अलबेले नहीं, इतना तेज हो गया मुरली, मुरली को पकड़ने में तो बहुत मुश्किल हो जाता।
भंडारी होगा तो भंडार खोलेगा, खुद ही भंडारी नहीं होगा तो भंडार कैसे खोलेगा?
बाबा तो खुद ही भंडार
है। बाबा किसे कहा जाता है वो भी बता दिया, साकार और जो सदा निराकार है, जो सदा साकार है उसको बाबा कहा जाता है, ग्रैंड फादर कहा जाता है। बाप का वर्षा मिले या नहीं मिले, लेकिन ग्रैंड फादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो शिव बाप जो आत्माओं का बाप है या ग्रैंडफादर है, क्या है? बाप है। उस बाप का वर्षा क्या है? बाप माने वर्षा। बाप हो और वर्षा ही न दे कुछ तो बाप कैसे हो सकता? फिर ये भी बताया, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं साथ से आकर मिलते हैं। और मिलते हैं तो कुछ दे कर जाते होंगे ना बच्चों को। दुनिया का हर एक बाप बच्चों से मिलता है तो कुछ देकर जाता है ना, वर्षा देकर जाता है। तो वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, क्या देकर जाता है? अकूट ज्ञान भंडार देकर जाता है, जिसके लिए गीता में कहा है कि ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। जिस पवित्रता के आधार पर कहा जाता है अंग्रेजों में हेवनली गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर का मतलब क्या है? हेवन का रचयिता, हेवन साकार है या निराकार है? और साकार हेवन का रचयिता भी साकार होगा या निराकार? साकार होगा। और आत्माओं का बाप निराकार है। तो आत्माओं के बाप को हेवनली गॉडफादर कहें अरे हेवनली गॉडफादर हेवन के रचयिता को कहा जाता है, और जो हेवन का रचयिता है हेवन कमाने वाला है। जैसे धनवान बाप होता है तो धन कमाता है, बच्चों को धन का वर्षा देता है, तो हेवनली गॉड फादर हेवन बनाता है, हेवनली सुख भोगता है, तो बच्चों के मुकाबले ऊंचे से ऊंचा हेवनली सुख भोगेगा या बच्चों के समान ही भोगेगा? हेवनली गॉड फादर है, जैसे शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से बार बार, या कहो कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा भी तो इंटरफेयर करके बोलती है। क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो अच्छाई में बाप आया हुआ है या बुराई में भी बाप आया हुआ है? है? दोनों में बाप आया हुआ है। चलो मान लिया, क्योंकि ब्रह्म वाक्य स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? साबित हो जाता है कि वो अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। और जो आत्माओं का बाप है उसको कल्याणकारी ही कहा जाता है या कभी अकल्याणकारी भी कहा जाता है? है? सदा कल्याणकारी, सदा शिव। परंतु वो इस सृष्टि पर जब आता है तो कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा, मतलब जैसे मैं सदा कल्याणकारी हूँ वैसे तुम बच्चों को भी नंबर बार कल्याणकारी बना कर जाता हूँ, नंबर बार बना कर जाता है या नंबर बार बच्चे अपने आप बनते हैं? कि शिव बाप बना कर जाता है, है? शिव बाप की आस नहीं है कि बच्चे नंबर बार बने, बाप तो चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे राजा बने, लेकिन नंबर वार हो जाते हैं क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत बाप है, दाता है, उसकी देन की कदर नहीं करते हैं। कदर करते हैं या देह के धंधों में ही लगे रहते हैं? ज्यादा टाइम किस में देते हैं? हैं? देह के धंधों में देते हैं। देह पांच तत्वों का पुतला है, पांच तत्व जड़ हैं और आत्मा चैतन्य है। तो चैतन्य जड़ को बनाएगा बिगाड़ेगा या जड़ चैतन्य को बनाएगा बिगाड़ेगा? ज्यादा शक्तिशाली कौन है? चैतन्य आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है। अगर अपने स्वरूप को 100% पहचान ले, 100% पहचानने का मतलब आत्मा जो षष्ठ रूपी रंगमंच पर पाठ धारी है, वो अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट को पहचान ले। किस जन्म में कैसा कैसा चोला लेकर मैंने पार्ट बजाया, उस बात को अच्छी तरह जान ले। जानता है तो बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान पार्टधारी, नहीं जानता है तो शिव बाप ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बता देते हैं कि जो पार्टधारी अपने पार्ट को ही नहीं जानता वो बेवकूफ पार्टधारी है। और पार्ट को वही बच्चे जान सकते हैं जो बच्चे अपने बाप को पहचानते हैं। बाप के कुल का, बाप के वंश का फखुर रहता है। तो अपने पार्ट का भी फकुर रहता है। बाप कोई पूरा नहीं जानते तो अपने वंश का भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा को आत्माओं के बाप का पूरा ज्ञान नहीं होता तो वो आत्मा संपूर्ण आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकती। इसलिए नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप आकर जो ज्ञान का भंडार देते हैं उस ज्ञान के भंडार को प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ पूरा अपनाए नहीं पाते हैं। देह की इंद्रियां आत्मा को अपने संग के रंग में खींच लेती है। यहाँ तक के कलयुग के अंतिम जन्मों तक आते आते अपने स्वरूप को टोटल भूल जाती है। आत्मा समझने के बजाय क्या समझने लग पड़ती, देह मनुष्य है, आत्माएं समझने लगती। पांच तत्वों का पुतला अपन को मांग बैठती, जिसका मिसाल बाप देते हैं। कोई बार बार स्मरण करता है या स्मरण दिलाया जाता है, मैं भैंस हूं, तो कहता है मैं खिड़की से बाहर कैसे निकलूं? देह के बंधन में इतने फंस जाते हैं कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर जो ज्ञान देते हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने का, उस ज्ञान की ओर आकर्षित ही नहीं हो पाते। न अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानते कि मैं आत्मा इस रंगमंच पर कौन से मानवीय वंश का पार्ट बजाने वाली हूँ, आत्माओं का बाप है, इस रंगमंच पर आता है, आप समान बनाकर जाता है, त्रिकालदर्शी है, मास्टर त्रिकालदर्शी बनाता है, तो ज्ञान का अखूट भंडारी कोई को तो जरूर ज्ञान का अखूट भंडारी बनाकर जाता होगा ना, नहीं तो आप समान का क्या मतलब है? जिसको आप समान ज्ञान का भंडारी बना कर जाता है, उस आत्मा को रंगमंच पर आने से पहले पहचानता है या नहीं पहचानता है? पहचानता है, इसलिए गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन की ओर इशारा करके कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यवधीयते। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, बड़े से बड़ा धर्म क्षेत्र ये है, जो संसार में बड़े से बड़े महान से महान सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला क्षेत्र है। ये दुनिया की बड़े से बड़ी युद्ध भूमि भी है। जो गीता के पहले अध्याय में ही बता दिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की धारणाओं के क्षेत्र में और धर्मों के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर भी, जो अनेक प्रकार के हर धर्म में कर्मकांड चल रहे हैं। जैसे भारतवासियों में शरीर छोड़ने के बाद समझते हैं आत्मा चली गई, शरीर जड़ रह गया, इस पुतले को जलाकर राख कर देना है। जबकि दूसरे धर्म वंश वाले क्या मानते हैं, है समझते हैं कि जो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ये देह की मृत्यु हो गई, डेड हो गया, उस मुर्दे को जलाते नहीं है, भस्म नहीं करते हैं। क्या करते हैं? दफन कर देते हैं मिट्टी में। समझते हैं? कि जब कयामत होगी, तो अल्लाह ताला आकर के इन मुर्दों को जगाएगा। तो मुर्दे को जमीन में जमीन दोस्त कर देते हैं। विदेशी धर्म पिताओं की डाली हुई परंपरा है, परंतु आत्माओं के बाप की ये डाली हुई परंपरा नहीं है। क्योंकि आत्माओं का बाप जिस वंश की स्थापना करता है वो सूर्य वंश है। पांच तत्वों का विनाश होता है। सूर्य का विनाश नहीं होता है, सूर्य तो सदैव रोशनी देने वाला है। तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं भारतवासी, वो बाप को जल्दी पहचान लेते और जो बाप को नहीं पहचानते, बाप के दिए हुए अखूट ज्ञान धन की क्या कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। वो बच्चे बाप को न पहचान कर जो और देहधारी धर्म पिताएं हैं, जो महामृत्यु के समय भी अपने देहबान को छोड़ ही नहीं पाते, देहबान को न छोड़ने के कारण आत्माओं का बाप जिस तन में आता है मुकर्रर रूप से, इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर उस तनधारी की अवहेलना कर देते हैं। देह अभिमान में आकर, देह अहंकार में आकर क्योंकि अपन को देह समझते, और जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तो देह अभिमानी धर्म की स्थापना करते हैं, अपने फॉलोअर्स को देह अहंकारी बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स को तो छोड़ो, जो भारत की देवात्माएं हैं उन धर्म पिताओं के आने से पहले ही सती रूपी रंगमंच पर आते हैं, देह अहंकार के कारण उन भारत की आत्माओं को देवात्माओं को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देवात्माएं क्यों कन्वर्ट होती हैं? जब भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं तो उन्हें तो प्रभावित होकर के देहधारी धर्म पिताओं की प्रजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो प्रभावित होता है वो प्रजा बन जाता है। और हिस्ट्री में देखा भी यही गया कि भारतवासी देवात्मा ही नंबर वार दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, हिस्ट्री में जो भी धर्म पिताएं आए जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, देहधारी धर्म पिताओं के आने से लेकर उस हिस्ट्री में भारतवासी ही और धर्मों में कन्वर्ट होती रहे, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो उन धर्मों में जाकर के वो श्रेष्ठ पद पाएंगे या नीचे पद पाएंगे, जो गीता में लिखा है स्वधर्मे निदनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा। जो शिवाजी का नारा था देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, तो जो आत्मा का धर्म है, आत्म की स्मृति में रहना, और देहधारी धर्म पिताओं का धर्म है, उनके फॉलोअर्स का धर्म है, कौन सी स्मृति में रहना? देह और देह के पांच तत्वों की स्मृति में रहना। ना पांच तत्वों की, पंचभूतों की स्मृति में रहने वालों को भौतिकवादी कहा जाता है। आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा रूपी सूक्ष्म रिकॉर्ड के अंदर क्या और कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इसके मनन चिंतन में रहने वाली आत्माएं अध्यात्मवादी कही जाती है। तो दुनिया में दो वाद हो गए, एक अध्यात्मवादी दूसरे भौतिकवादी। अध्यात्म का अर्थ ही है अध्य माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर, उसका मनन चिंतन मंथन करना, आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है उसके बारे में विचार सागर मंथन करना। क्या कहा? उसका नाम शास्त्रों में सागर मंथन दिया है, सूर्य का मंथन नहीं है, सागर मंथन। जो सूर्य है और जो सागर है, दोनों में अंतर है या नहीं है? सूर्य सदैव डिटैच होकर रहता है, धरणी से भी डिटैच होकर रहता है, और सागर धरणी से अटैच होकर रहता है, क्योंकि तीन हिस्से में सागर फैला हुआ है और चौथाई हिस्से में धरणी फैली हुई है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है?
सागर गोद में धरणी,
सागर की गोद में धरणी समाई हुई है। धरणी माता को कहा जाता है, धरणी माता। धारणा शक्ति वाली माता, सागर ज्ञान जल का धाता है, जैसे सामान्य रूप से हद के मनुष्यों की दुनिया में बाप भी होता है, माता भी होती है, बाप शक्ति के भंडार का दाता है, विधाता है अपने परिवार का, वि माने विशेष, दाता माने धारण करने वाला। परिवार की पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? है बाप के ऊपर होती है। ये साकार दुनिया की बात है, साकार दुनिया का हर पिता शक्ति को धारण करने वाला दाता है। परिवार का विधाता है, कौन सी शक्ति? जो परिवार में पुरुष रूपी पिता ही धारण करता है, पहले पहले बाद में उस शक्ति को माता में धारण कराता है। वो भी अति सूक्ष्म शक्ति है जो जितना सूक्ष्म होता है उतना जास्ती पावरफुल होता है। तो इस दुनिया में जैसे हर पुरुष रूपी पिता के अंदर वो सूक्ष्म शक्ति है जो माता धारण करके परिवार बनाती है, क्या शक्ति है? अरे माता धरणी है, धारण करने वाली है, तो क्या धारण करती है? है सहन शक्ति धारण करती है, वो तो बाद की बात। अगर सहन शक्ति भी धारण करती है परिवार की रचना में, तो जब परिवार की रचना का पहला पहला प्रसंग आता है तो माता सहन करती है या पिता सहन करता है? माता सहन करती है। और जब फाउंडेशन में ही सहन करती है, आदि सो अंत कहा जाता है, मध्य में तो सहन करना ही पड़े, आदि मध्य अंत माता को सहन करना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना कौन से युग से शुरू होता है? हैं? संगम युग में भी अगर आरंभ होता है तो द्वैतवाद में आने से आरंभ होता है, या एक शिव बाबा दूसरा न कोई ऐसी स्टेज बनने पर आरंभ होता है? जब द्वैतवाद आता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो वंश, दो दो मतें, तब सहन करना होता है माता को। क्यों? क्या कारण है? अज्ञान। माने पुरुषों में अज्ञान होता ही नहीं,
बच्चों में
हाँ? ये बच्चों की बात नहीं, माता की बात हो रही है। इस दुनिया में जो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं, वो ही ज्यादा क्यों सहन करती हैं? द्वापर युग से ऐसा क्या परिवर्तन आता है जो माताएं ही धारण करती हैं सहन शक्ति?
ये विचार
है,
ये विचार
माने माताएं भी विचार करती हैं, पुरुष नहीं करते।
माताएं भावना वाली होती है इसलिए प्रभावित हो जाती।
भावना भावनावाद और बुद्धिवाद दो अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? है भावना अलग बात है, बुद्धि अलग बात है। बुद्धि माने आत्मा।
माताओं में पवित्रता होता है ना?
है,
माताओं में पवित्रता होता है ना?
क्या होता है?
पवित्रता।
मैंने पवित्रता को ज्यादा सहन करना पड़े। वाह भाई वाह। एक तरफ बोला गीता में ज्ञान जो है वो पवित्रतम चीज है, और ज्ञानी को और योगी को, अर्थात ज्ञान और योग को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जितना ज्ञानी होगा उतना योगी जरूर होगा। ज्ञानी माने जानकार, बड़ा जानकार बड़ा योगी। तो परिवार में जो भी बाप के बच्चे होते हैं, उन बच्चों में आगे पीछे जन्म लेने के कारण, प्रत्यक्षतारूपी जन्म लेने के कारण छोटे बड़े कहे जाते हैं, उन बच्चों में सबसे जास्ती जानकार कौन सा बच्चा होता है? बड़ा बच्चा होता है। भारतीय परंपरा में राजाओं की हिस्ट्री देखी जाए तो राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को राजा ही का वर्षा दिया? बड़े बच्चे को राजा ही का वर्षा दिया। ये परंपरा कहां से चली? भगवान बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं, वो भगवान जो स्वयं भगवान नहीं बनता, भाग्यवान भी नहीं बनता, उसे न भाग्य चाहिए न दुर्भाग्य चाहिए। वो आत्माओं का बाप भगवान है या धनवान है? भगवान है, धनवान नहीं है। अरे कभी कहते अखूट धनवान है, कभी कहते धनवान नहीं है, काहे का? भाग्य का। तो ज्ञान का अखूट भंडारी है, भाग्य का अखूट भंडारी तो नहीं है। बड़े से बड़ा भाग्य वाला है या सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो बड़े से बड़े भाग्यशाली का आधार लेता है, है? मैं आता हूँ तो भाग्यशाली रथ लेता हूँ। भाग्यशाली किस आधार पर कहा? बड़ा भाग्य किस आधार पर बनता है? बड़ा भाग्य है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य कौन से युग में बनता है? कौन बनाता है? बड़े से बड़ा भाग्य मनुष्य सृष्टि का बाप बनाता है। बनाने से पहले स्वयं पुरुषार्थ करके बड़ा भाग्यशाली बनता है, भाग्य का अर्जन करता है, तब भाग्यशाली बनता है कि अर्जन करने से पहले ही कोई उसे भाग्यशाली बना देता है, है? अर्जन करता है, भाग्य का अर्जन किस आधार पर करता है? जो बहुत बड़ी शक्ति है पवित्रता, ईश्वरीय ज्ञान दुनिया की सबसे जास्ती पवित्र शक्ति है। जिस पवित्रता के आधार पर हम क्या नारा देते हैं ब्राह्मण, पवित्र बनो कि योगी बनो, पवित्र बनो, है? क्या नारा है? पवित्र बनो पहले, फिर योगी बनो। जो जितनी ऊंची पवित्रता धारण करेगा वो उतना ऊंचा योगी बनेगा। दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हो जाते हैं। जो जितना बड़ा योगी बनता है वो उतना बड़ा ज्ञानी साबित हो जाता है, है? और जो योगी बनता है वो सारे संसार का सहयोगी बनता है। सहयोग सहानुभूति के आधार पर होता है, सह अनुभूति अर्थात कोई को डंडे की मार लगती है डंडे से पिटाई पर पिटने वाला क्या अनुभूति करता है वो अनुभूति पहले पीटने की इच्छा करने वाले को होनी चाहिए कि पिटाई पिटने पर क्या अनुभूति होती है तो कहेंगे पीटने वाला पिटने वाले का भाव धारण करता है सहानुभूति करता है जब ऐसी अनुभूति होती है तो पश्चाताप करता है अंदर ही अंदर आत्मा दुखी होती रहती है ऐसी सहानुभूति योग के आधार पर आती है सहयोगी बनने के आधार पर आती है तो संसार का बड़े से बड़ा योगी सो बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सहयोगी और बड़े से बड़ा योगी बड़े से बड़ा ज्ञानी ज्ञानी माने जानकार जैसे नाम दिया जनता पार्टी वो तो सिर्फ नाम दे देते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि क्या जानकारी रखनी चाहिए जनता पार्टी को जो जनता पार्टी हद वाली हो या बेहद वाली हो दोनों ही प्रकार की जनता पार्टी गुजरात के क्या नाम था है जय प्रकाश नारायण नारायण के द्वारा फाउंडेशन डाला जाता है और नारायण वो नारायण जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है उसी जन्म में जो उसी जन्म में डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के ईश्वर की डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनता अगले जन्म में बनता है वो भी नारायण कहा जाता है लेकिन बाप का टाइटलधारी नारायण टाइटलधारी में और ओरिजिनल में अंतर होता है या नहीं होता है? है होता है जैसे बताया ब्रह्मा अनेकों के नाम है तो पहला पहला कोई ब्रह्मा हुआ होगा ना जो पहला ब्रह्मा है ब्रह्मा ने बड़ी महामान्य मां दुनिया की पहली बड़े से बड़ी माँ। वो परम ब्रह्म कही जाती है और उसी ब्रह्मा का टाइटल दादा लेखराज को मिलता है। उसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है? जिस जन्म में परम ब्रह्म बना, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो जिस जन्म में पहला ब्रह्मा नामधारी हुआ वो ओरिजिनल ब्रह्मा था, फिर अगले जन्म में अगली शूटिंग करने वाला। जो ब्रह्मा नामधारी हुआ वो टाइटलधारी हुआ या ओरिजिनल था? टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ। जैसे कोई प्रिंसिपल कॉलेज का साल दो साल के लिए विदेश में भेजा गया तो उसके स्थान पर जो भी कुर्सी पर बैठेगा उसको टाइटलधारी कहा जाएगा, वाइस प्रिंसिपल। ऐसे ही जो नारायण है, डायरेक्ट नर से नारायण बनता है ईश्वर के द्वारा, साक्षात ईश्वर ही ज्ञान देकर नर से नारायण बनने की युक्ति बताता है। उसी जन्म में नारायण बनता है, परंतु जो उसी जन्म में नारायण नहीं बनता, अगले जन्म में नारायण बनता है, वो अगले जन्म में नारायण बनने वाली आत्मा देह का आधार लेने वाली बनती है या निराधार नारायण का टाइटल ले लिया है? देह का आधार लिया। कैसे? जो 30x40 इंच का साक्षात्कार से चित्र बनवाया गया उसमें डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले ऊपर खड़े हैं, देह की दुनिया में खड़े हैं या ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हैं? उनकी देह की दुनिया नहीं है, इसलिए उनका नाम ही है नारायण, नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिनका ज्ञान जल में ही घर है, दूसरा कोई घर है ही नहीं, जड़ तत्वों का बना हुआ। ये शरीर भी उनका घर नहीं है। क्या? जो मुकर्रर शरीर ईश्वर बाप शिव आकर के लेते हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंग मंच पर, वो शरीर भी किसका है, किसका बन जाता है? अरे
बाप का बन जाता है,
आत्माओं के बाप का बन जाता है। आत्माओं का बाप शिव मुकर्रर रथ रूपी शरीर लेता है अपने कब्जे में या आत्मा को लेता है?
शरीर को
लेते हैं,
शरीर को लेते
हैं, रथ लेता है। दुनिया में भी कोई बाप प्रजा रूपी परिवार पैदा करने के लिए किसका आधार लेता है? माता का आधार लेता है, माता की आत्मा का आधार लेता है, आत्मा को कंट्रोल करता है या पांच तत्वों के शरीर को कंट्रोल करता है? है आत्मा कंट्रोल करता है। आप अदर कुमार हैं? सच्ची सच्ची बात बताओ, क्यों कंट्रोल करता है? शरीर रूपी रथ को क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि कोई भी बाप बनने वाला पुरुष पहले पहले कुमार होता है, मेल होता है या कुमारी या अधर कुमारी होता है? कुमार होता है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में मार काम विकार को कहा जाता है, और कु माने है खराब, संग कुसंग। तो वो मार के मारे हुए होते हैं कुमार, उनके अंदर जो काम विकार की आग लगी रहती है वो कुमारियों में, अधर कुमारियों में, अधर कुमारों में लगी होती है, नहीं लगी होती है। इसलिए दुनिया के विद्वानों ने भी माना है कि जो युगल मूर्त हैं, अधर कुमार हैं, उनकी 9999 चिंताएं और कुमार की एक चिंता जीवन की, दोनों को तराजू पर रखकर तौला जाए तो वो एक चिंता का पलड़ा भारी हो जाता है। मतलब मार, काम विकार की ऐसी मार लगती है कुमार जीवन में कि जो ताकत उनके अंदर है, शक्ति, उस शक्ति को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। नहीं धारण कर सकते तो धारण कराने के लिए किसका आधार लेते हैं? है ज्ञान का आधार लेते हैं, माता का, कन्या का आधार लेते हैं, कन्या को माता बनाते हैं और वो शक्ति धारण कराते हैं परिवार बनाने के लिए। और दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति क्या है? ये तो हद की, दुनिया की हद के पुरुषों में हद की शक्ति है। बेहद पुरुष कौन है? परम पुरुष। पुरुष माने पुरुष, शरीर रूपी पुर में आनंद से शयन करने वाला आत्मा। पुरुष माने आत्मा, तो आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वालों में परम पुरुष कौन है? सुप्रीम सोल शिव बाप। उनकी भी एक हद है, जो बड़े से बड़ी संसार की लौकिक पारलौकिक शक्ति है, जिसे ज्ञान कहा जाता है, पवित्रता का भंडार कहा जाता है, उस पवित्रता की शक्ति को वो सीमित समय तक ही धारण करके रह सकता है। हर 5000 वर्ष के बाद उसे किसकी जरूरत है?
माता की जरूरत है।
पुरुष की जरूरत है या एंटी की जरूरत है? वो पुरुष है, परम पुरुष। आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती, और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। देवात्माएं भी अपनी सृष्टि रचते हैं, मनुष्य भी अपनी अपनी सृष्टि रचते हैं, राक्षस भी सृष्टि रचते हैं, और सभी प्राणी अपनी अपनी सृष्टि रचना करते हैं। लेकिन ये परंपरा किसने डाली, किसने आरंभ किया, कब ये परंपरा पड़ी? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जो संगम है दोनों युगों का, तब ही ये परंपरा पड़ती है। जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान उवर्तन्ति मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे अर्जुन, हे पृथ्वीपति, संसार में जो भी परंपराएं मनुष्यों में चल रही हैं, प्राणी मात्र में चल रही हैं, वो सारी परंपराएं या परंपराओं पर चलने वाले मनुष्य या प्राणी मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं, तो इसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर ईश्वर बाप शिव ने आकर के श्रेष्ठ कही जाने वाली देव सृष्टि जब बनाने का संकल्प हुआ तो उसी ने पहले पहले किसका आधार लिया? आत्मा का आधार लिया या रथ का आधार लिया? है रथ का आधार लिया। जिस रथ के बारे में बोला ये रथ है, क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत, जिस खेत में मैदान में युद्ध होते हैं, तो बोला हे अर्जुन तेरा ये रथ है बड़े से बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता युयुत्सव, युद्ध सब माने युद्ध करने की इच्छा करने वाले इकट्ठे हुए हैं, इन युद्ध की इच्छा करने वालों का आदि कब हुआ, कहां से हुआ और अंत कब होता है, कहाँ होता है? यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। क्योंकि बोला है ब्रह्म महावाक्य मुरली में ही बोला मैं आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो मैं त्रिमूर्ति से वह तीन मूर्तियों की रचना करता हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तो सभी आत्मा रूपी बच्चे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये तीनों पार्ट बजाते हैं, जो बाप का धंधा वो आत्मा रूपी बच्चों का भी धंधा। नए दिव्य गुणों की स्थापना का कार्य कौन करता? आत्मा ही ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्म अर्थात मां के रूप में करती। फिर दिव्य गुणों की जब स्थापना का काम पूरा हो जाए तो जो अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं उनका विनाश जब तक नहीं होता तब तक नई दुनिया बनेगी क्या? बनेगी? दिव्य गुण भी अपना काम करेंगे और जो दुर्गुण भरे हुए हैं आत्मा में वो भी अपना काम करेंगे तो दोनों का क्या होगा? युद्ध हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए त्रिमूर्ति शिव को? दूसरी मूर्ति शंकर द्वारा विनाश। तो हर मनुष्य आत्मा दिव्य गुणों की स्थापना के बाद अपने अंदर दुर्गुणों का विनाशकारी बनती है। तो जब दुर्गुणों का विनाश हो जाता है क्या? दिव्य गुणों का स्थापना का काम पूरा हुआ और दुर्गुणों का विनाश का कार्य पूरा हुआ, फिर क्या रह जाता है? है दिव्य गुण रह जाते हैं। जो दिव्य गुण रह जाते हैं वो आत्मा के अंदर सुख की अनुभूति कराएंगे या दुख की अनुभूति कराएंगे? है सुख की अनुभूति कराएंगे और 100% शुरुआत में आरंभ में सुख की अनुभूति होगी या परसेंटेज में होगी? परसेंटेज में होगी। है 100% सुख की अनुभूति, ऐसी अनुभूति जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी, घटने का नाम निशान नहीं लेगी। उसको नाम दिया है अतीन्द्रिय सुख। कैसा सुख? अतीन्द्रिय सुख। ये तब ही पैदा होता है जब देह भान, देह की स्मृति, देह की इंद्रियों की स्मृति का नाम निशान न रहे। जब तक देह देह की इंद्रियों, जो देह पांच तत्वों से बनी हुई है, जड़ तत्वों से, उन जड़त्वमयी तत्वों का स्मृति में नाम निशान न रहे, नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाए, देह से मोह नष्ट हो जाए, देह की इंद्रियों से मोह नष्ट हो जाए, देह के संबंधियों से नष्ट मोहा हो जाए, देह के खाने पीने पहनने रहने के रोटी कपड़ा और मकान के पदार्थों से भी नष्ट मोहा हो जाए, ऐसी स्टेज आने पर, जिस स्टेज को ब्रह्म महावाक्य में बताया है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, किसकी स्मृति?
देह की स्मृति।
अरे देह की स्मृति, उल्टा ही रास्ता।
आत्मा को भूल जाना चाहिए,
बदलू हाँ।
एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन शिव बाबा एक या दो, एक कैसे? शिव मेरी बिंदी का नाम है, निराकारी स्वरूप का नाम है, और बाबा साकार ऐड होगा तब बाबा नाम पड़ता है। मैं बिंदु रूपी स्टेज में हूँ तो मैं आत्मा हूँ, बिंदु निराकार का बाप हूँ, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का बाप हूँ, ग्रैंडफादर बाबा नहीं। जब कोई साकार तन में प्रवेश करूंगा तो गाया जाता है भक्ति मार्ग में, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु। देह में प्रवेश होने के बाद अनेक संबंध आते हैं, ईश्वर बाप के साथ अनेक संबंधों में ग्रैंडफादर जिसे बाबा कहा जाता है वो भी आता है। तो शिव बाबा का मतलब शिव निराकार भी है और बाबा माने साकार भी है, दोनों का मेल है तो शिव बाबा, और सिर्फ ज्योति बिंदु है तो क्या संबंध है? शिव बाप और हम आपस में भाई भाई। तो सवाल ये है कि शिव बाप पवित्रता का अखूट भंडार तो है परंतु इवर प्योर है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो सुप्रीम सोल बाप जो स्वयं ब्रह्मा मुख से कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी अखूट ज्ञान का भंडार तो हूँ लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर माने प्रैक्टिकल करने वाला। तो प्रैक्टिकल रूप क्या है पवित्रता का? जिसे एवर प्योर कहा जाए, शिव बाबा का प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है, प्रूफ और प्रमाण क्या है? शिवलिंग
सदैव निराकार स्थिति,
सदैव निराकारी स्थिति, वो तो हर आत्मा निराकार होती है, हर मनुष्य हर प्राणी के अंदर निराकार आत्मा है।
निरंतर स्टेज में रहते
धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि इबार प्योर है या नहीं है? हैं? अरे धर्म पिताएं इवर प्योर हैं या नहीं है? उनमें देह भान का अंश रहता है या नहीं रहता है? देवान का अंश रहता है, इसका मतलब है कि वो एवर प्योर नहीं हो सकते। इसलिए इस सृष्टि में जो देवात्माओं की पवित्र दुनिया बनती है, वो सब पवित्र दुनिया में भी नहीं आ सकते। देव आत्माओं में भी दो प्रकार की है, एक वो देव आत्माएं हैं जो प्रैक्टिकल में देह से पवित्रता और अब व्यभिचारी देह की स्थिति को धारण करने वाली है। देह और देह की इंद्रियों से कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं करती। दूसरी वो देवात्माएं जो उस पवित्र दुनिया में नहीं आती, जिसमें देह और देह की इंद्रियों से पवित्र व्यवहार करने वाली अभिविचारी देवात्माएं पार्ट बजाती हैं, परंतु विविचारी मनुष्यों की दुनिया में तो आते हैं, परंतु देवताओं की जो मूल परंपराएं हैं उन परंपराओं पर चलने वाले हैं। द्वापर कलयुग के जन्मों में वो आत्माएं जब जन्म लेती हैं मनुष्य सृष्टि में, तो एक धर्म को मानने वाली होंगी। एक राजा को मानने वाली होंगी। जैसे हिस्ट्री में किसी का नाम सुना, जिसने आदिल शाह के सामने कोर्निश करने से इनकार कर दिया, हम अपने जीवन में एक को राजा मानते हैं, अपने परिवार में इस दुनिया में हम किसी को राजा बाजा नहीं मानते। नहीं याद आया है? आदिल शाह के सामने है हाँ जी, आदिल शाह के सामने कोर्निश करने से, सर झुकाने से इनकार कर दिया कि हम अपने जीवन में एक को मानने वाले हैं, किसी दूसरे के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं। आज भी ऐसे परिवार जो प्रायः लोप हो चुके हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले, फिर भी कहीं न कहीं भारत में ऐसे परिवार ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलेंगे, जिस ज्वाइंट फैमिली में 60-60, 70-70 बातियों का परिवार एक चूल्हे पर खाना खाता है, परिवार में एक मुखिया की बात मानेगा, परिवार का मुखिया जिस धर्म की धारणाओं को मानने वाला होगा उसी धर्म की धारणाओं को मानेगा, उसी धर्म ग्रंथ को मानेगा, दूसरे धर्म ग्रंथ को नहीं मानेगा, एक कुल का फखर होगा, एक वंश की महिमा करेगा, पूरा परिवार एक ही भाषा बोलेगा, ऐसे नहीं परिवार का एक भांति कांग्रेस की बातें बोलने लगे, दूसरा भांति जनता पार्टी की बातें बोलने लगे, तीसरा भांति बहुजन समाजवादी पार्टी की बातें बोलने लगे, उस परिवार का मुखिया जिसको वोट देगा पूरा परिवार उसी को वोट देगा, ऐसी देवकुल में जन्म लेने वाली आत्माएं जिनकी संख्या 23 करोड़ के आसपास होती है,
वो आदि शक्ति के सामने कर
है,
उनका नाम क्या
थी? अरे आदिल शाह से किसने लड़ाई ले रही थी, जिसके बाप ने जीवन भर आदिल शाह की कोर्निश की, शाहजी, लेकिन बेटे ने उस आदिल शाह की कोर्निश नहीं की, तो ऐसे ऐसे परिवार जो देवी देवता सनातन धर्म को तो मानते हैं परंतु पक्के देवता नहीं बनते, सतयुग त्रेता रूपी युग में नहीं आते, भले इस दुनिया में आते हैं जिसे द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया कहा जाता है, परंतु अपने धर्म के पक्के होते हैं, धारणाओं के पक्के होते हैं, ये परंपरा भी कहां से चले, कि बाप के थोड़े बच्चे पक्के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और जो ब्राह्मण तुम्हें पक्के नहीं बन पाते, कच्चे रह जाते हैं, पवित्रता की मंजिल में वो देवता तो बनेंगे लेकिन गिरती कला के देवता बनेंगे या चढ़ती कला के बनेंगे, हैं? आप कहते चढ़ती कला, वो कहते गिरती कला, हाँ, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण उनसे जो पीढ़ी बनती है सतयुग के पहले जन्म में वो गिरती कला की पीढ़ी होती है, या चढ़ती कला की पीढ़ी होती है, क्योंकि वो देह का अंग श्रेष्ठ इंद्रियों में जो श्रेष्ठ आंखें कही जाती हैं, उस दृष्टि का सुख भोगते हैं। जो दृष्टि देह का अंग है, देह विनाशी तो देह के अंग भी विनाशी, उन अंगों से जो प्राप्ति होती है सुख की वो भी विनाशी। उनको कैसा देवता कहेंगे? अपने बाप के मुकाबले कच्चा कहेंगे या पक्का कहेंगे? है कच्चा कहेंगे। और बाप क्यों है?
नष्टो मोह बन गया,
क्योंकि वो देह के स्मृति में नहीं रहते, वो अतीन्द्रिय सुख को।
हाँ, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे सतयुग की पहली पीढ़ी में, वो बच्चे देह के अंगों का सुख भोगेंगे। इसलिए उसी पीढ़ी से पतन शुरू हो जाता है, शक्ति छीन शुरू हो जाती है, और उनको जन्म देने वाले देह और देह की इंद्रियों से परे की स्टेज में चले जाते हैं। देह की ज्ञान इंद्रियों का भी सुख नहीं, कर्म इंद्रिय लिंग का भी सुख नहीं, देह से और देह के अंगों से परे की स्टेज का सुख भोगते, आत्मिक सुख जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। ये अतीन्द्रिय सुख पक्की पक्की वो ही आत्मा इस भोग पाती है जिनके लिए गायन है शास्त्रों में, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किनसे पूछो? गोप गोपी क्यों? ये शब्द कहाँ से आया है?
आपसे गुप्त संबंध जोड़ता
है। हाँ, जिन्होंने सुप्रीम सोल बाप की स्टेज में जो रहने वाली मनुष्य आत्मा है, उस मनुष्य आत्मा के साथ अनेक प्रकार के गुप्त संबंध जोड़े हैं। संबंध समान बंधन को कहा जाता है या असमान को कहा जाता है? एक चींटी जैसा हो, दूसरा हाथी जैसा हो, उनको दोनों को संबंधी कहेंगे। क्यों? क्योंकि समान बंधन है ही नहीं। तो ऐसी समान बंधन वाली आत्माएं जो मनुष्य रूप में तो हैं, जब भगवान बाप संगम युग में आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के रूप में हैं, जो ब्राह्मण देव कहे जाते हैं, जिन ब्राह्मणों की आज भी पूजा होती है भारत में, चोटी के ब्राह्मण हैं, नहीं तो नौकरियों के भी ब्राह्मण होते हैं, लेकिन चोटी के जो ब्राह्मण हैं वो नौ धर्मों से कनेक्शन रखने वाले नहीं है। नौ धर्मों में से जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, उसी धर्म से कनेक्शन रखने वाले हैं जन्म जन्मांतर। जो सच रूपी वृक्ष में मूल तने के रूप में नीचे से ठीक ऊपर तक जाता है, दाई ओर की डालियों में कन्वर्ट होने वाले नहीं। भले भारतीय धर्म है, बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म आदि आदि, भारतीय धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होते, वो भी विधर्मी है। भी माने विपरीत, विधर्मी और बाई ओर के धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होते, जिसे वाम मार्ग कहा जाता है, जो शास्त्रों में भी लिखा है कि देवात्माएं भी वाम मार्ग में चली जाती है। कौन से युग में? द्वैतवादी द्वापर युग से वाम मार्ग में चली गई। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग। कैसा उल्टा मार्ग? दाएं हाथ को अच्छा माना जाता है, बाएं हाथ को बुरा माना जाता है, क्योंकि दाएं हाथ से दान धर्म के काम किए जाते हैं और बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है। तो भगवान बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो चार वर्णों की रचना करता हूं, मनुष्य आत्माओं के बीच में। कौन से युग में है? संगम युग में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, नौ कुरियों वाले ब्राह्मणों के गुणों को देखता हूं, गुणों के आधार पर ब्राह्मण जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर, और ब्राह्मण जीवन में स्वभाव जो अपनाते हैं, कोई का अच्छा स्वभाव सुखदाई और कोई का बुरा स्वभाव दुखदाई, बात बोलेंगे तो भी दूसरे को दुख, दृष्टि से देखेंगे तो भी दूसरा दुखी हो जाए, वाइब्रेशन फेंकेंगे तो उनके वाइब्रेशन से भी दुखी हो जाते, कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे तो उन कर्मों से भी लोग दुखी हो जाते। तो ये ब्राह्मण जीवन में जिन्हें ब्रह्मा की औलाद असली कहा जाता है, जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही जब नई सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे गए, वो ब्राह्मण इस संसार में अनेक धर्म फैले हुए थे। तब भगवान बाप ने कहा मनुष्य आत्माओं को सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को छोड़ दे, सब धर्मों को छोड़ दे तो क्या धर्म पिताओं को छोड़े या न छोड़े हा? अरे वो भी धर्म गुरु हैं, वो ही असली धर्म गुरु हैं। धर्म ऐसा झूठा झूठा धर्म स्थापन करते हैं देह के आधार पर, जो संसार नीचे की ओर जाता है, गिरती कलम, दुख बढ़ता जाता है, ऐसी दुखी सृष्टि बनाने वाले हैं। जो मनुष्य सृष्टि में धर्म पिता है, नर के रूप में राक्षसी पार्ट बजाते हैं, कर्म इंद्रियों का राक्षसी कर्म करना सिखाते हैं, देवान के आधार पर, देह अहंकार के आधार पर, वो दैहिक दुनिया बनाते हैं, आत्मिक स्टेज में रहने वाली दुनिया कौन बनाता है, है? जहां मनुष्य आत्मिक स्टेज में रह करके देवता कहे जाते हैं, कौन बनाता है, वो बनाता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, कौन, शिव बाबा। शिव बाबा बनाता है या शिव बाप बनाता है, हैं? हैं?
बाबा बनाता है,
क्या बनाता है, हैं? आत्मिक स्थिति में रहने वालों की दुनिया कौन बनाता है, बड़ी मुझान पैदा हो गई, शिव बाबा बनाता है, शिव बापा नहीं बनाता है,
संपन्न होने के बाद,
अच्छा वो शिव बाप संपन्न होता है पहले फिर बाद में बनाता है,
शिव बाबा संपन्न होता है जब तो विश्वपिता कहता है ना,
संपन्न कौन बनाता है,
बनाते हैं।
और जो संपन्न बनते हैं, उन संपन्न बनने वालों में वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया जो स्वर्णिम संगम युग स्वर्ग कहा जाता है, वो कौन बनाता है, आत्माओं का बाप बनाता है या मनुष्यों का बाप बनाता है, मनुष्य आत्माओं का
बाप बनाता
है, मनुष्य आत्माओं का बाप स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग की दुनिया की राजधानी बनाता है राज्य बनाता है तो किस आधार पर बनाता है?
पवित्रता के आधार से।
कहाँ से आती है पवित्रता?
पवित्रता धारण करने से।
कौन धारण कराता है?
आत्मस्थिति।
आत्मिक स्थिति कौन धारण कराता है?
आप ही धारण करता है।
संग का रंग लेके धारण है ना, सबके का रचिता
है। हाँ
बाप नहीं है ना,
ठीक है। जो लक्ष्मी नारायण है, जो स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, वो साकार स्वर्ग बनाता है या निराकार स्वर्ग बनाता है? साकार स्वर्ग बनाता है। और वो जो साकार स्वर्ग बनता है, उस पहले सीन का नाम क्या है? चार सीन है ड्रामा के, चार युग हैं, सत्ययुग। सत्ययुग की पहली पीढ़ी में
सत्य के आधार पर,
हाँ सत्य के आधार पर, सत्य माने ज्ञान, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य के आधार पर जो सतयुग बनता है, वो सतयुग बनाने वाला साकार नारायण है। जो सतयुग में चैतन्य युगल मूर्त बच्चों को जन्म देता है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले अब्बल नंबर बच्चों को जन्म देता है, वो साकार स्वर्ग है या निराकार स्वर्ग है? साकार स्वर्ग। निराकार कोई स्वर्ग होता है या नहीं होता है?
निराकार है,
निराकार स्वर्ग कैसा होता है?
आत्मा निराकार
है,
आत्मा निराकार स्टेज में।
हाँ सो जाओ। भगवान की वाणी चलती रहे, आराम से सो जाओ और मुंह ऊपर कर दो। निराकार बाप आकर के निराकारी स्वर्ग बनाता है, और वो निराकारी स्वर्ग निराकारी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु का सुख है या देह का सुख है?
ज्योति बिंदु का
सुख है। उस सुख का नाम क्या है? अतीन्द्रिय सुख। जो अतीन्द्रिय सुख है निराकारी स्टेज धारण करेंगे, जिनकी यादगार शालिग्राम है, निराकारी स्टेज शिवलिंग भी है, जो रुद्र यज्ञ रचे जाते थे प्राचीन काल में, तो बड़ा लिंग बनाते थे एक, और लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते थे। बड़ा सेठ होता था तो लाखों की तादाद में शालिग्राम बनवाता था, कोई लाख, कोई दो लाख, कोई तीन लाख। सवेरे को बनाए जाते थे सूर्योदय के टाइम पर, और शाम को बिगाड़ दिया जाता है। उसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा के दिन में शालिग्राम बनते और ब्रह्मा की रात में शालिग्राम बिगाड़ दिया जाता। वो अज्ञान की रात, वो ज्ञान का दिन। जब ज्ञान पैदा होता है उन निराकारी स्टेज धारण करने वाले शालिग्रामों को कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं विनाशी शरीर नहीं हूं, देह की कोई चिंता नहीं, शरीर भर कैसा भी हो आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। किसने बोला ये? किसने बोला? अरे शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला। अटल वाक्य बोला। शरीर सड़ते जावेंगे आत्मा पावरफुल होती जावेगी। शरीर सड़ते जावेंगे, शरीर और शरीर की इंद्रियां सड़ती जावेंगी, आत्मा पावरफुल होती जावेगी, तो सेवा का कार्य शरीर के द्वारा करेंगे या सिर्फ आत्मा के द्वारा करेंगे?
शरीर का कोई चिंता नहीं रहता है जब आत्मा।
देयं वा पाठयामि कार्यं वा साधयामि। देह खलास हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण का कार्य है, मुखवंशावली ब्राह्मण का कार्य क्या? जो बाप का धंधा वो ही बच्चे का धंधा। बाप का धंधा नहीं तो बच्चे का भी धंधा नहीं। इसलिए बोला पहले मनमना भव, बाद में मत्याजी भव। मनमना भव हो गए माने क्या स्टेज बन गई? कौन कहता है मनमना भव? अरे कोई कहता है या नहीं है? शिव बाबा कहता है मनमना भव, साकार निराकार का मेल कहता है मनमना भव। मेरे मन में समा जा जो साक्षात्कार से बनाए गए झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है, नंगा बैठा हुआ है, अर्थात शरीर रूपी वस्त्र का बांध नहीं है, उसकी संपन्न स्टेज जो यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है, उस संपन्न स्टेज की यादगार शिवलिंग, उसको वस्त्र दिखाए जाते हैं है? नहीं। इंद्रियां दिखाते हैं? नहीं। माने देह रूपी वस्त्र और इंद्रियों का भान ही नहीं है। किसका भान है? ज्योति बिंदु आत्मा का भान है। जिस शिवलिंग की सात्विक यादगार द्वापर के याद में सोमनाथ मंदिर बनाई गई थी, जिस सोमनाथ मंदिर में लाल लिंगाकार पत्थर के अंदर ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार हीरे के रूप में, हीरो पाटधारी आत्मा की यादगार हीरा दिखाई गई थी। ये हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार?
दोनों
है, एक आदमी बोलो सुन लिया ना
साकार की
यादगार
है लिंग है साकार की यादगार और हीरा
सृष्टि के बाप संपन्न हो जाते हैं तो आत्मिक बिंदु स्वरूप यानी शिव के समान बन जाते हैं शिव नहीं बनते पर शिव के समान बनते हैं इसलिए उनको बिंदी बिखा वही आत्मा की जब देहाभिमान होती है तो लिंग शिवलिंग बड़े रूप में साकार
देह रूपी लिंग
साकार यादगार
जिसको हाथ पांव नाक का कान नहीं दिखाए गए अर्थात इंद्रियों की स्मृति नहीं है वो लिंग रूप बड़ा रूप कोई देह की यादगार नहीं है माने देह है या नहीं है
देह है लेकिन देह नहीं है
देह है बड़ा आकार है या सूक्ष्म बिंदु आकार है बड़ा आकार है इसलिए मुरली में बोला छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप में याद करो बड़ा रूप माने साकार छोटा रूप माने बिंदु निराकार तो दोनों रूप अलग अलग हैं या एक ही व्यक्तित्व है
एक ही व्यक्ति
एक ही आत्मा की यादगार है या दो आत्माओं की यादगार है
एक आत्मा की
है
एक ही आत्मा की यादगार
एक आत्मा की यादगार मन शिव की यादगार नहीं
सृष्टि के बाप की यादगार
फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता
क्योंकि वो शिव की तरह बन जाते हैं और बेटे को पिता का नाम मिल जाता है शिव समान बनते हैं इसलिए शिव का नाम
समान बनता है
पूजा करते
शिव समान बनते हैं बाप समान बनते हैं बाप तो नहीं बनते
हैं
जैसे मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं जो खुदा का नूर है जो खुदा खुद आता है किसी के बुलाने पर नहीं आता उसी खुदा का नूर धारण कर लेता है लेकिन वो खुदा नहीं है वो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई तो है जैसे कोई भी लौकिक परिवार में बड़ा भाई ज्यादा कमाई करने वाला होता है या छोटे भाई ज्यादा कमाई करने वाले होते हैं बड़ा भाई तो जो मनुष्य सृष्टि में बीज रूप मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बाप है वो आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है लेकिन आत्माओं का बाप नहीं है बाप बाप ही होता है और भाई भाई ही होता है बड़ा भाई बाप की कुर्सी मिल जाए बाप की गद्दी मिल जाए राज्य की और गद्दी मिल जाने के बाद जो धर्म है, जो धर्म बाप ने सिखाया, क्या धर्म सिखाया है? अरे क्या सत्य धर्म? क्या धर्म सिखाया? स्वधर्म सिखाया। स्व माने आत्मा, पर माने पराया, पर है देह, देह के पांच तत्व ये पर हैं, पर धर्म है देह के धर्म। देह के पांच तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहे, वैज्ञानिकों की तरह, डॉक्टरों की तरह, तो वो कौन से धर्म में लगे हुए हैं? पर धर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्व क्या है, स्व माने अपना क्या है, आत्मा अपनी है। इसके स्वरूप को जानना, उस स्वरूप में टिकना, उसी स्मृति में रहना, ये स्वधर्म है। नहीं तो है अपनी देह की याद में रहना, देह की स्मृतियों की, देह की इंद्रियों की स्मृति में रहना, देह की इंद्रियों के रस लेने में लगे रहना, इंद्रियों का सुख लेने में लगे रहना, देह के संबंधों में बुद्धि जाना, देह के पदार्थों में बुद्धि जाना, ये परधर्म है या स्वधर्म है? तो घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए। जो गीता का महावाक्य भी है, स्वधर्मे निधनम से, आत्मी की स्थिति में शरीर भी छूट जाए तो भी बड़ी अच्छी बात, और देह की स्मृति में शरीर छूटे तो अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। सभी स्त्रियों का अनुभव है, सभी पुरुषों का अनुभव है, स्त्री शरीर छोड़ती तो पुरुष अंग की याद में शरीर छोड़ती, क्यों? क्यों? क्योंकि अंत मते सोगते, सारा जीवन जिस पुरुष रूप का संग किया वो अंत समय में याद जरूर आ जाता है। इसलिए संग के रंग की बड़ी बलिहारी है, संग तारे कुसंग बोरे, तो किसका संग करना चाहिए? जो अविनाशी है उसका संग करना चाहिए। कौन है अविनाशी? अच्छा, कीड़े की आत्मा को याद करो, कीड़े में आत्मा नहीं होती है। अरे मकोड़े में आत्मा होती है कि नहीं? मकोड़े की आत्मा को याद करो। है पता कैसे चलेगा कि 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में कौन है मनुष्य सृष्टि का बाप?
ध्यान देते
हैं
भारत ध्यान देते
हैं। अच्छा
ऐसा ध्यान कोई नहीं दे सकते।
आशाराम बापू के जो हुजूम इकट्ठे बैठते हैं लाखों की तादाद में, वो कहते हैं हमारे बापू जी से अच्छा ज्ञान दुनिया में कोई गुरु नहीं देता।
सुबह भी देते हैं।
तो लड़ाई हो गई ये तो। तुम कहते हैं हमारा गुरु अच्छा ज्ञान देता, वो कहते नहीं हमारा गुरु अच्छा ज्ञान देता। तुम कहेंगे तुम्हारा गुरु तो जेल में डाल दिया गया, पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो कहीं तुम्हारा गुरु भी जेल में डाला जाता है, तो लड़ाई हो जाएगी ना।
सदा से आत्मिक स्थिति में रहते हैं,
है?
आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना शिव बाबा।
कैसे पहचानेंगे ये आत्मिक स्थिति में है ये देह की स्थिति में?
दूसरों को भी सिखाते हैं ना, दूसरों को भी बनाते हैं ना।
है
लाखों तावादियों को भी बनाते हैं ना।
क्या बनाते हैं? सुखदाई
आत्मिक स्थिति।
आत्मिक स्थिति माना सुखदाई देवता बनाते हैं। कोई बना
थोड़ी समय है बचा है, थोड़ी समय बचा है
नहीं बना ना।
बनने वाला बन रहा है।
कौन बन रहा है? एक आध हमें बताओ तो हम भी उसका संग करें।
अभी रास्ते में है ना,
वो रास्ते में ले चलो ना।
आप ही एक बड़ा गुरु।
अभी आप हम कह रहे आप ही बड़ा गुरु, यहाँ आके बैठो।
आप ही सच्चे गुरु।
ये तो अंधश्रद्धा की बातें हो गई ना। प्रूफ और प्रमाण चाहिए।
इतना बड़े परिवार को
है,
इतना बड़ा परिवार को आप अच्छी।
आशाराम बापू का बड़ा परिवार या तुम्हारा बड़ा मजमा लगता है?
उसी परिवार को मात पिता है ना,
है?
उसी परिवार को ये परिवार मात पिता होता है। आशाराम बापू का परिवार को
हाँ
ये शिव बाबा का संतान बापू होता है ना।
वो लोग कहेंगे तुम्हारे सारे परिवार का बापू जी हमारा आशाराम बापू।
कैसे होगा?
कैसे बाबा तुम बताओ पहले कैसे?
उसमें भगवान नहीं आया ना।
तुम जो कहते हो उसमें भगवान आया, उसका क्या प्रूफ है?
मुरली प्रूफ है।
मुरली प्रूफ है? वो कहते हैं हमारे बापू जी जो चलाते हैं वो मुरली है।
भविष्यवाणी भी प्रूफ है।
तुम्हारे ब्रह्मा बाबा ने या तुम्हारे कोई भी गुरु ने जो मुरली चलाई वो गुरु नहीं है, वो मुरली नहीं है।
कैसे?
वो कहेंगे तुम कैसे बताओ, सो बताओ।
भविष्यवाणी प्रूफ है ना।
क्या प्रूफ है?
हर वचन में भी प्रूफ है।
वो वचन बताओ, एक वचन बता दो।
बात में आते हैं दक्ष राजधानी स्थापन करते हैं।
कहाँ राजधानी स्थापन हुई हमें भी ले चलो।
जो देखे जो सुने आपका
आपने देखा होगा, आपने सुना होगा।
अभी नहीं बाबा होगा,
अभी नहीं सुना, सुन लो। हाँ अभी नहीं आया ना, अभी नहीं आया है।
गुप्त है,
माधव भी गुप्त है, बाबू भी गुप्त है, परिवार भी गुप्त है।
अरे अम्मा के लिए गुप्त होता है क्या बच्चा?
ज्ञान भी गुप्त है।
अम्मा के लिए बच्चा गुप्त होता है? आत्मा गर्भ में गुप्त में प्रवेश करती है माँ के अंदर, तो माँ को तो पता चलता है कि चुर्र पुर्र हो रही है,
बाहर आने के लिए तो ना।
माँ के लिए गुप्त है नहीं गुप्त है? वो माता कह रही है क्या, जब आएगा तो जो आंखों से देखेगा, जो कानों से सुनेगा, वो कहेगा मेरा बाप। आगे अभी तो नहीं कह रहा, अभी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अभी निश्चय निश्चय आ रहा है ना, माने निश्चय रूपी जन्म होता है कि मेरा बाप आ गया, मैं बाप का बच्चा हूँ, जिंदा हूँ, और अनिश्चय रूपी मृत्यु हो रही है। माना जिनको आज निश्चय रूपी जन्म होता है, कल उनकी मृत्यु हो जाती है अनिश्चय की। तो जन्म मरण के चक्र में है, जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है या मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया है, चल रहा है। तो हम मृत्यु लोक में हैं या अमरनाथ के अमर लोक में हैं? हैं? और जिस शिवलिंग की बात करते हैं, जिसकी यादगार बद्रीनाथ में है, सभी शिव के मंदिरों में है, जिसकी यादगार देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती मिले हुए शिवलिंग हैं, वो शिवलिंग के प्रति प्रैक्टिकल में कोई जानकार है कि वो ही शिवलिंग बाप हमें मिल गया, मिल गया या नहीं मिल गया?
मिल गया,
मना शंकर मिल गया, गणेश मिल गया, हनुमान मिल गया, या उन देवताओं का बाप मिल गया? बाप तो कहते हैं मैं आता हूँ तो दक्ष से राजधानी स्थापन कर देता हूँ, वो मिल गया? मिल गया, राजधानी कहाँ है? तुम्हें मिल गया तो हमें भी ले चलो राजधानी में। अरे हाथ जोड़ दिए, मिल गया कि नहीं मिल गया?
अभी तक नहीं।
अभी तक आप क्या कह रहे? आप कह रहे
गुप्त रूप में मिल गया ना?
गुप्त रूप में कैसा होता है?
साकर में मिल गया।
जो शास्त्र के वास में है संगम के ज्ञान में भी है, उसे बाप में संगम के ज्ञान है।
जब वो मिल जाएगा, जो पहचान बोल दी, जो इन स्थूल आंखों से देखे, क्षण भर के लिए भी देखे, वो भी बोलेगा, और जो इन कानों से लंबा लंबा भाषण नहीं, दो शब्द भी सुने, वो भी कहेगा, दिल से कहेगा, मुझे मेरा बाप एवरलास्टिंग जीवन भर के लिए मिल गया, अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, मैं अमरनाथ बाप का अमर बच्चा बन गया, अनिश्चय रूपी मौत कभी होने वाली नहीं है। अभी तो इसलिए बोलते हैं बड़बड़ के कि माया ने फाइनल पेपर तो अभी लिया नहीं है, माया का फाइनल पेपर भी होता है, कब होता है? जब बाप और बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा होता है, दुनियावी गर्भ जेल की जन्म की बात नहीं है, संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म, संसारी लोग भी कोई भी हो, जो भी इन आंखों से देखेंगे कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, मेरा बाप आ गया। कानों से दो शब्द भी सुनेंगे कहेंगे मेरा बाप आ गया। कोई भी धर्म का धर्मावलंबी हो, ये बात सब के लिए लागू होगी। क्या क्या बात? जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाप आ गया, बेहद का बाप आ गया। बड़े से बड़ा मान्यता प्राप्त इस दुनिया में क्रिश्चियन धर्म का पोप भी आएगा, वो भी इन आंखों से देखे, क्षण भर के लिए भी देखे, दो शब्द भी सुनेगा तो मानेगा। कौन आ गया? 250-200 करोड़ का मनुष्य सृष्टि, 500 करोड़, उसमें से 200-250 करोड़ का बाप क्राइस्ट नहीं आ गया, उसका भी बाप आ गया, ऐसे बोलेगा। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मनुष्य मात्र का बाप आ गया, जिस बाप से हर मनुष्य मात्र को मुक्ति, दुखों से मुक्ति और जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति मिल जाएगी, अनुभव होगा। प्रैक्टिकल बड़े ड्रामा में भी, ब्रॉड ड्रामा में भी, वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएगी आप लोग से, तो पहले जन्म में अनुभव करेगी, देह में रह करके अनुभव करेगी, क्या दुख का अनुभव करेगी या सुख का अनुभव करेगी? क्राइस्ट जिसको दिखाया जाता है कीलियां ठुकी हुई है हाथ पांव में पेट में, वो दुख का अनुभव करेगा या सुख का अनुभव करेगा? हाँ,
दिन के अंदर है वो तो किया, किंतु निकल गए।
हाँ जी, क्योंकि धर्म पिता है, जैसे क्राइस्ट के लिए मान्यता है, जीसस में क्राइस्ट आया तो जीसस की आत्मा को दुख का अनुभव होता है। क्राइस्ट वाली आत्मा जब चाहे तब प्रवेश करे, जब चाहे तो आत्मिक स्थिति में संपन्न होने के कारण बाहर निकल जाती है। इसलिए रुद्रवत्सों की ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है? सारी दुनिया रुद्रमाला है। क्यों बोला? हाँ, इस मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं महामृत्यु से पहले क्या अनुभव करके जाएंगी? निराकारी आत्मा हूँ, देह के बंधन से मुक्त अनुभव करके जाएंगे, देह के बंधन में भी नहीं, और देह से जो मिलने वाले दुख हैं उनके भी बंधन में नहीं, मुक्ति का अनुभव करें। और फिर जिस देह में प्रवेश होके पार्ट बजाती हैं, उसमें देह में रहते हुए भी इंद्रियों से सुख लेंगी, दुख नहीं लेंगी। सुप्रीम सोल बाप ने बोला, ब्रह्म महावाक्य मुरली में बोला, क्राइस्ट की आत्मा को क्रॉस पर दिखाते हैं, इसलिए दिखाया है। कौन सी बात थी, किस बात को लेकर क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया? पवित्रता की क्या बात थी? अरे पवित्रता की बात भी तो बतानी पड़े। अरे क्राइस्ट की आत्मा जीसस में प्रवेश करके ज्ञानेन्द्रियों का सुख भोगने वाली थी क्या? ज्ञानेन्द्रियों का सुख भोगने वाली थी। जिस मनुष्य तन में प्रवेश किया वो देह की इंद्रियों का सुख भोगने वाली थी। कंफ्यूजन हो गया मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को। क्या कंफ्यूजन हो गया है? अरे भ्रष्टाचारी है या श्रेष्ठाचारी है? भ्रष्टाचारी कौन सी आत्मा? भ्रष्टाचारी कौन सी आत्मा? है हाँ, जिसमें प्रवेश किया वो भ्रष्टाचारी। जिसने प्रवेश किया क्राइस्ट की आत्मा ने, वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगती है, पवित्र रहती है या अपवित्र रहती है? तो लोगों को जो कंफ्यूजन हुआ उसका कारण क्या हुआ, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया है? अरे पवित्रता की बात पर ही क्रॉस पर चढ़ाया गया। लोगों ने नहीं समझा कि वो आत्मा पवित्र कर्म करने वाली है या भ्रष्ट कर्म करने वाली है। ये धर्म पिताएं जो भी आए सबने धर्म के धक्के खाए, धर्म के धक्के। जो ऊपर से आत्मा आती है सत्यधाम से आत्मलोक से, वो धर्म के धक्के खाती है, या जिसमें प्रवेश किया वो धर्म के धक्के खाती है? ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? संगम युग में सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस मनुष्य सृष्टि के बीज को जैन ग्रंथों में सनत कुमार कहा है, जिसके बारे में जैन ग्रंथों में लिखा है कि 6 कल्प होते हैं, जैसे हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, ऐसे वो 6 भाग किए हैं सृष्टि चक्र के। उनमें से जो 1 कल्प है वो सनत कुमार कल्प कहा जाता है। उस सनत कुमार कल्प में ये मान्यता है जैनियों की कि वो दुनिया में सबसे जाति दुख भोगता है। कौन? सनत कुमार। ब्रह्मा का जो भारतीय ग्रंथों में पहला पुत्र माना जाता है। सभी धर्म पिताएं हिस्ट्री में विख्यात है, धर्म के धक्के खाए तो जो बड़े से बड़ा धर्म पिता होगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो धर्म के धक्के नहीं खाएगा, है? खाएगा। जिस धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम। और धर्म वाले जानते हैं हमारे धर्म पिता कौन, हमारा धर्म ग्रंथ कौन। और ये भारतवासी देवात्माएं अपने धर्म को भूल गई, धर्म पिता को भूल गई, धर्म ग्रंथ को भी भूल गई। ऐसी दुर्गति हो जाती है। ये दुर्गति क्यों होती है? खास भारत के देवात्माओं की सुनी सुनाई बातों पर माताएं ज्यादा विश्वास करती हैं या पिताएं ज्यादा विश्वास करते हैं? ये भारत की माताएं हैं, देवात्माएं। मातृ देश है भारत देश, दूसरे धर्मखंड मातृ देश नहीं है। पितृ को मानने वाले हैं, पिता को मानने वाले हैं, धर्म पिता को मानते हैं। माता को नहीं मानते। और भारत वाले, भारत माता की जय। जब भारत माता की जय बोलते हैं तो उन्हें पिता याद आता है, आता है नहीं याद आता? कारण क्या है? है कोई कारण है या नहीं है? है सहन शक्ति, कारण है कि जो पिता बनते हैं साकार में, क्या जो साकार में पिता बनते हैं वो पिता बनने से पहले द्वापर युग से खास द्वैतवादी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के क्या बन जाते हैं? है दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दुष्ट युद्ध करने वाले कर्मेंद्रियों से। कन्याओं माताओं के ऊपर दुष्ट शासन करने वाले बन जाते हैं। कर्मेंद्रियों का युद्ध करते हैं तो प्यार का युद्ध करते हैं। जैसे अखाड़े में पहलवान अपने चेले के साथ कुश्ती करता है तो प्यार से कुश्ती लड़ता लड़ाता है, या जोर जबरदस्ती करता है, दुष्ट युद्ध करता है, मारामारी करता है? नहीं करता। और ये दुर्योधन दुशासन जो भारत के बनते हैं, बड़े बड़े दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर। कर्म इंद्रियों से दुष्ट युद्ध करते हैं। किसके साथ? बलवान के साथ या बलहीन के साथ? परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो निराकार है या साकार? पहले निराकार है, फिर जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो क्या है? साकार है। साकार बाप है। साकार बाप बन करके निराकारी ज्ञान का बीज डालता है। ज्ञान का बीज डालता है या नहीं है? बीज डालता है। जो निराकारी बीज डालने वाला है वो बीज रूप बाप हुआ ना। जो बाप है, बाप के रूप में बीज डालने वाला है, माता बीज धारण करती है। परंतु इस सच्चे रूपी रंगमंच पर दो माताएं गाई हुई हैं, दिति और अदिति। दिति माने खंडित, अदिति माने अखंड, दिति माने व्यभिचारिणी, बार बार खंडित होने वाली, सतीत्व को खंडित करने वाली, जो सत्य शक्ति एक से धारण की, उस सत्य की शक्ति को मिक्स करके क्या बनाने वाली? झूठ बनाने वाली, विष बनाने वाली, उसको कहते हैं द्वापर युग से वैश्या। कैसे बनती है? 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 वैश्याओं में और जो भारतीय नारियां गाई हुई हैं सती साध्वी, उनमें क्या अंतर होता है?
नारी एक से बाबा दूसरा न कोई।
जो वैश्य है अनेकों के संग में आने के कारण अनेकों का खून पीती है। एक होता है देह का खून और एक होता है संकल्पों का, आत्मा का खून। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में दूसरों से ज्ञान सुनती है, झूठे संकल्पों का खून धारण करके खून खराब कर लेती है, विशेष बन जाती हैं वैश्या। परंतु ड्रामा भारत का यही ड्रामा है कि भगवान जिस तन में आता है वो पुरुष तन होते हुए भी, प्रजापिता कहा जाने वाला होते हुए भी, भगवान उसका नाम क्या देता है? हैं? अरे दादा लेखराज में आता है तो क्या नाम देता है? तो पहले तन में आता है तो नाम क्या देता है? ब्रह्म, क्योंकि पहला पहला है इसलिए परम ब्रह्म हो गया। तो परम पुरुष के मुकाबले कमजोर हो गया या पावरफुल हो गया? है कमजोर हो गया। ये कमजोरी जो है वो ही पांच तत्वों का स्वरूप धारण करती है, जिन्हें कहते हैं प्रकृति, प्रकृष्ट रूप कृति, प्रकृति। पुरुष और प्रकृति दो का खेल है ये सृष्टि। इस सृष्टि में पुरुष प्रबल होता है और प्रकृति भी है, परिवार के बच्चों के बीच प्रबल है, यह पुरुष के मुकाबले प्रबल है, बच्चों के साथ प्रबल है। इसलिए ये प्रकृति पांच तत्वों का संघात, जिसे जगदम्बा कहा जाता है, वो प्रकृति जब बाप की बड़ी बच्ची कौन माया बेटी से हाथ मिला लेती है तो कई गुनी पावर हो जाती है, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सारी सृष्टि में राज्य करती है, सबको कंट्रोल करती है, पहले बीज रूप आत्माओं को कंट्रोल करती है, लेकिन एक को कंट्रोल नहीं कर पाती। कौन? प्रकृति पति को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए बोला कि बाप रास्ता बताते हैं, खाली लफ्ज नहीं बताते हैं। मन मना भव, मेरे को याद करो। किसको याद करो? कौन है मेरे? शिव बाबा क्या है? साकार तन सा शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, जिसकी यादगार शिवलिंग कहा जाता है। ओम शांति।